अभी इंद्रियों का हम क्राइटेरिया लगाएंगे, एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, तो उनके पांच भेद, पांच ग्रुप। अभी पहले जो ग्रुप में डिवाइड किए थे वो पहले एक ग्रुप वाले अन्य अन्य ग्रुप में चले जाएंगे, इंद्रियों की अपेक्षा अन्य अन्य ग्रुप में जाएंगे। फिर काय की अपेक्षा जब हमने उसमें देखा था तो शक काय, उसमें छह ग्रुप हो गए, पांच तो स्थावर और एक क्रस वाला, ऐसे छह अलग अलग काय वाले जीव हो गए। योग की अपेक्षा कल हमने देखा था कि मनोयोग वाले, वचन योग वाले और काय योग वाले, उसमें हमने देखा था कि एक इंद्रिय तो उनके पास तो अकेले वचन है नहीं है, तो काय योग वाले है। दो इंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय तक उनको काय योग भी है और वचन योग भी है, और संज्ञ पंचेंद्रियों को काय योग भी है, वचन योग भी है और मनोयोग भी है। तो मनोयोग के हमने चार वेद देखे थे, वचन योग के भी चार वेद देखे थे और काय योग के सात वेद देखे थे। अब हम अगला प्रकरण आज लेंगे वेद मार्गणा वाला। अब वेद की अपेक्षा जीवों का क्लासिफिकेशन होगा, तो मूल में मूल वेद वाले जीव और बिना वेद वाले, जिसका वेद चला गया है एक ही जीव। तो देखो इसमें वेद क्या है उसकी बात है, निर्वेद या अपगत वेद कहते हैं। नाम कर्म के उदय से पुरुष स्त्री या नपुंसक रूप शरीर बनता है। हमने देखा था कि नाम कर्म बहुत सारे हैं, 93 प्रकार के अलग अलग नाम कर्म, तो उसमें ये सारे ही शरीर की जो रचना होती है, तो शरीर नाम का जो नाम कर्म है उसके कारण और अन्य अन्य भी जो अन्य नाम कर्म है उसके कारण शरीर की रचना होती है। तो नाम कर्म के उदय से पुरुष स्त्री या नपुंसक रूप शरीर बनता है, उसे द्रव्य वेद कहते हैं। वो शरीर का चिन्ह कहते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, तो विशिष्ट शरीर के चिन्हों से हम उसको पहचानते हैं, तो उसको कहते हैं द्रव्य वेद। और परस्पर अभिलाषा युक्त मैथुन संज्ञा का धारक जीव भाव वेद वाला जीव है। जीव के जो भाव है उसको कहते हैं भाव वेद। अधिकांश जीवों के समान वेद पाया जाता है। समान वेद का अर्थ जैसा शरीर का चिन्ह है वैसा ही भाव वेद, यानी जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद, यानी स्त्री जीव को स्त्री वेद, पुरुष जीव को पुरुष वेद, ऐसे बहुत जीव कॉमनली ऐसा ही होता है। देव नारकी और भू भूमि के मनुष्य और जीवंतों के द्रव्य और भाव वेद समान होते हैं। अभी देवों में क्या है, स्त्री और पुरुष वेद ऐसे दो ही है। नरकों में अकेला एक नपुंसक वेद ही है और मनुष्य और जीवंतों में तीनों ही वेद पाए जाते हैं। द्रव्य पुरुष वेद होगा तो भाव पुरुष वेद ही होता है, कहाँ, देवों में और भोग भूमि के जीवों में। कर्मभूमि के मनुष्य और तिरंशों में समान या असमान वेद हो सकते हैं। अब ये वेद मार्गणा की अपेक्षा सारे ही जीवों को हम डिवाइड करेंगे, तो वेद मार्गणा की अपेक्षा जीवों का विभाजन करने पर वेद सहित जीव और वेद रहित यानी अपगत वेदी या अवेदी, हमने देखा था मैथुन संज्ञा, हमने देखी की तब देखा था कि नवे गुण स्थान में वो चला जाता, तो उसके बाद वो सारे ही जीव वेद निकल जाने पर उनको अवेदी कहते, अपगत वेदी कहते, और तब तक वो सारे ही जीव वेद सहित वाले। इस तरह दो भेद होते हैं सवेदी जीवों के। अब ये जो सवेदी या अवेदी ये कहा है, यहाँ भाव वेद समझना, द्रव्य वेद की यहाँ बात नहीं, क्योंकि शरीर तो बना रहेगा, मुनि अवस्था है उनकी, तो द्रव्य पुरुष वेद तो है वहाँ, परंतु नवे गुण स्थान के बाद वहाँ कोई भी भाव वेद नहीं। सवेदी जीवों के पुरुष वेदी, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी तीन वेद होते हैं। नवे गुण स्थान में वेद का अभाव होता है तब तक के जीव सवेदी है, उसके पश्चात यानी दसवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, चौथे सारे ही जीव अपगत वेद। यह भाव वेद की अपेक्षा है। द्रव्य पुरुष वेदी जीव ही छठे या ऊपर के गुण स्थानों में जा सकते हैं। देखो ये नियम बताया, द्रव्य की वेदी की पांचवे गुण स्थान के ऊपर नहीं जाए। यानी कोई कहते हैं कि मुनि स्त्री को मुक्ति होती है उसी भाव में, स्त्री पर्याय में रहते हुए मुक्ति होती है, तो इस बात का यहाँ निषेध हो जाता है। एक से चतुर इंद्रिय तक सभी ही नपुसक वेदी ही होते ही लगाया। हमने देखा था ये सारे जी संबुर्खन ही होते हैं और ये सारे नपुसक वेदी होते हैं, उनमें स्त्री और पुरुष ऐसा भेद नहीं होता। सभी नारकी जी नपुसक वेदी होते हैं, देवों में और भोग भूमि के मनुष्य और चिरियंतों में स्त्री और पुरुष दो ही वेद होते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य और चिरियंतों में तीनों ही प्रकार के वेद पाए जाते हैं। नवे गुण स्थान के पांच भागों में से, अब ये पांच भाग ये अलग अलग उनके जो कर्म है ना उसकी अपेक्षा से पांच भाग क्या कौन सा, अभी पहले वेद चक्र चला जाएगा, फिर क्रोध चला जाएगा, फिर मान चला जाएगा, फिर माया चली जाएगी, फिर लोभ जो बादर है वो सूक्ष्म हो जाएगा, ऐसे वो नवे गुण स्थान के पांच वेद। तो नवे गुण स्थान के पांच भागों में से सवेद भाग तक यानी पहले भाग तक वेद का सद्भाव रहता है, नवे के शेष भागों वाले तथा दसवें ग्यारहवें बारहवें तेरहवें और चौदह गुण स्थान वाले जीव अपगत वेदी है। ये हुआ वेद मार्गना की अपेक्षा ये जीवों का हमने विभाजन कर दिया। अब कषाय मार्गना, तो कषाय से तो परिचित है ना, कितने कषाय है आपके पास बोलो, कषायों के नाम सुने ना, याद नहीं आप बोलो कषाय कौन कौन से नाम सुनाए कभी आप बोलो, खाली चार बोलो, हाँ वो नौ कषाय हो, और मूल मेन कषाय कौन से है, रोज हम करते हैं ना, हाँ बोलो, हाँ क्रोध मान माया लो, मालूम है ना, मालूम तो था वो खाली नौ कषाय गिनाते हैं ना, तो ये कषाय मूल भूल गए, अच्छा है ना भूल गए तो, वैसे पर्याय में से ही नष्ट हो जाएगा तो अच्छा है कि नहीं। तो क्रोध मान माया और लोभ, अभी उसके डिटेल सारे देखेंगे अपना, तो सारे ही संसारी जीव, पहले देखो संसारी ने पहले गुण स्थान से चौदहवें गुण स्थान तक के जीव, उसमें हमने पहले हम देखेंगे कषाय सहित वाले जीव और कषाय रहित वाले जीव। तो दीपाली आप कहो कषाय रहित वाले जीव कौन कौन से हो गए, कौन से गुण स्थान वाले जीव कषाय रहित है, आप बोलो, 11, 12, 13, 14 ग्यारहवे वाला भी अंतर्मूल तक है ना, वो ग्यारहवा गुण स्थान, वहाँ कोई क्रोध मान माया लोग या कोई नौकरी कोई कथा नहीं होगा, उपशम हुआ है सारों का, पूर्ण विचार की है कि अकसा ही हो गया। तो ग्यारहवे बारहवें तेरहवें चौदहवें वाले तो उनके कोई कथा नहीं है, अभी दसवें वाले को कौन सा कथा है, चारों है क्या, अकेले सूक्ष्म लोग है, उसके क्राइटेरिया अलग हो जाएगी। अब नौवे तक कितने कितने कषाय है, सारे ही है, अभी जो हमने नौवे के पांच भाग देखे, पहले भाग में वेद चला गया, दूसरे भाग तक तो चारों कषाय है, क्रोध चला जाएगा तो अगले भाग में तो तीन कषाय रहे, फिर मान भी चला जाएगा तो दो ही कषाय रहे, फिर माया भी चले जाएगी तो एक ही कषाय रहे, नौवे के अंत भाग में लोभ रह गया, बादल लोग जिसको मिले और दस्ते में उसका सूक्ष्म हो जाता है तो उसको मिले सूक्ष्म लोग, यानी तब तक के ही क्रोध मान माया लोग ये चारों ही कषायों से ही होते हैं। अभी इन कषायों में भी हमने चार चौकड़ी देखी, किसको याद है नाम, आप अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ओ प्रत्यय के अनावरण क्रोध मान माया लो, प्रत्यय के अनावरण क्रोध मान माया लो और संज्वलन क्रोध मान माया लो, अभी ये सारी बातें हम यहाँ देखें, कौन से स्थान वाले को कौन से वाले क्रोध होते हैं ये सारा यहाँ आ रही है। अभी हमें पता ही है गुण स्थान में तो वैसे हमने सीखा ही, अब थोड़ा यहाँ रिविजन हो जाएगा। कषाय मार्गना में सभी संसारी जीवों को हम पहले दो भागों में विभाजित करेंगे, कषाय सहित और कषाय रहित। अभी देखा ना, दसवें गुणन स्थान तक कषाय सहित जीव है और ग्यारहवें बारहवें तेरहवें और चौदहवें गुण स्थान के जीव कषाय रहित पूर्ण वितरागी है। कषाय सहित जीवों में भी क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले और लोभ वाले जीव इस प्रकार चार भेदों में विभाजन होता है। देखो, जीव के एट अ टाइम एक इच्छा उदय रहता है, एक यानी क्रोध का ही उदय होगा या मान का होगा या माया का होगा या लोभ का उदय होगा। परंतु क्रोध का होगा तो वो चारों जो है ना, जो मिथ्यात्य है उसको अनंतानुबंधी और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संचलन चारों ही का एक साथ, चारों ही प्रकार के क्रोध एक साथ उदय होता है। जब हम कहेंगे ये क्रोध वाला जीव वाला यानी उसका उदय कर रहा है, वैसे अंदर सत्ता में तो चारों ही पड़े हैं और बंद भी चारों का ही करता है। देखो, क्रोध करेंगे ना तो भी क्रोध मान माया लोभ चारों ही कर्म करते हैं, बंधने में तो चारों बनते हैं, भले आप क्रोध करो, मान करो, माया करो या लोभ करो। तो बेटा क्रोध अच्छा नहीं है, दूसरा कोई कषाय, कौन सा कषाय अच्छा है बेटा? कोई भी कषाय अच्छा, ऐसा तो है ही, कोई कषाय करने लायक है ही नहीं। फिर भी कोई भी कषाय क्यों ना हो, बनते तो सब है। क्रोध करेंगे तो भी क्रोध मान माया लोभ सभी बन देंगे, लोभ करेंगे तो भी सारे बन देंगे, ऐसा ही बंधने का स्वरूप है। क्रोध मान माया वाले लोग वाले जीव इस प्रकार चार भेदों में विभाजन होता है। एकेंद्रियों से पंचेंद्रिय तक चारों ही प्रकार के कषाय पाए जाते हैं, चारों यानी क्रोध मान माया लोग सारे। अभी ये पेड़ यहाँ दिख रहा है, उसमें कौन कौन से कषाय दिख रहे हैं आपको, कौन से होंगे दिख रहे हैं? अभी ज्ञान में आते हैं ना, हम शास्त्र पढ़ते तो शास्त्र द्वारा आगम द्वारा हम ये सारा देख सकते हैं। तो पेड़ तो कचरा स्थल लहराते हुए दिखते हैं ना, तो उनमें कौन से कषाय है? सभी क्रोध मान माया लोग और वो भी चारों चौकड़ी सारे ही विद्यमान है वहाँ, और नौ नौ कुछ उनको भी नहीं छोड़ना, सारे ही वहाँ विद्यमान है। तो हमें बाहर से पता नहीं चल रहा है, इसलिए वहाँ है नहीं इस बात। नौवे गुण स्थान में क्रमशः क्रोध मान माया का अभाव होकर लोभ कषाय शेष रहता है। दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होता है और दसवें के अंत में उसका भी अभाव होता है। आपने ये पढ़ा था ना गुण स्थानों में। सामान्यतः कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं, विशेष अपेक्षा उसके चार प्रकार यानी जाति भेद बताए हैं इस प्रकार। अब यहाँ जाति भेद कर, पहले जो क्रोध मान मालो ये चार प्रकार के कषाय कर, अभी एक एक प्रकार में चार चार जाति है कषाय। ये जो अनंतानुबंधी वगैरह कहते हैं ना, वो कषाय उनकी जाति है। अकेला उसमें तीव्र है वो अनंतानुबंधी है और मंद है वो संतुलन, ऐसा है नहीं है। अनंतानुबंधी में भी तीव्र मंद के बहुत सारे भेद होते हैं। इतना मंद वाला अनंतानुबंधी होगा ऐसा लगे अरे ये जीव कितना अच्छा है, इतने उसके मंद परिणाम, परंतु वो है अनंतानुबंधी। तो ये पहचान ना करता, जो बहुत गुस्सा करे वो अनंतानुबंधी है और बिल्कुल जिसको गुस्सा बाहर दिखता नहीं वो ऊपर वाला गुणस्थान वाला ऐसा है। तो उनकी कषाय उनकी जाति ही अलग है, तो उसका लक्षण क्या है उसको अब हम देखें। देखो ये जाति ऐसी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। हर एक प्रकार में क्रोध मान माया लोभ पाए जाते हैं। हम देखे ना, एक चौकड़ी, दो चौकड़ी, तीन चौकड़ी, चार चौकड़ी, ये चौकड़ी चौकड़ी यानी क्रोध मान माया लोभ को मिलकर चौकड़ी कहते हैं। अभी उसकी जाति कौन सी है? तो अनंतानुबंधी हो सकती है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। जिसको अनंतानुबंधी का उदय उसको चारों का है, ये भी पहले देखा था हमने। इसकी एक चौकड़ी निकल गई उसको तीनों का ही है, उसमें से मेन और प्रत्याख्यान है, परंतु है तीनों का उदय। जिसको दो टुकड़े निकल गई जो देश चरित्र वाला है उसको दो कषाय, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो मुख्य रूप से हम उसको प्रत्याख्यान का वहाँ स्वरूप बताएंगे, परंतु दोनों का ही उदय एट अ टाइम होता है। अनंतानुबंधी का उदय है ना, कोई कहेगा नहीं नहीं ये हमारा संज्वलन का कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ का संज्वलन भी वहाँ का अन्य कषाय भी अनंतानुबंधी जैसे काम करता है। जैसे यहाँ सारे बच्चे बैठे, कोई एक बहुत उधम करता है तो अन्य भी बच्चे उसके साथ उतना ही उधम करते हैं, तो हमको मालूम होता है इसमें से मुखिया कौन है, तो उसको जरा क्लास में से बाहर निकाल देते हैं तो बाकी उतने प्रमाण में शांत हो जाते हैं। तो वैसे अनंतानुबंधी के साथ और प्रत्यागन प्रत्यागन संज्वलन है, वो भी अनंतानुबंधी जैसा काम करते हैं। अनंतानुबंधी निकल जाए तो फिर उसकी वो अपना अपना जैसे वो अप्रत्याख्यान आवरण जैसे काम करेंगे, तो तीनों ही एक साथ वहाँ, चारों ही एक साथ होते हैं। देखो हरेक में मंद और तीव्र में भेद पाए जाते हैं, अब उनका स्वरूप देखते हैं। ये बहुत महत्व की बात है, ये मुखमार प्रकाशक में भी है, कर्मकांड में भी लिखे, अनेक ग्रंथों में लिखे, इसको पहचानना कैसे, उसका लक्षण क्या है। तो अनंतानुबंधी क्रोधाधिक, क्रोधाधिक में चारों लेना, तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक्व का घात करते हैं, क्योंकि अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व, उसके साथ ये कषाय संबंध प्रस्थापित करते हैं। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का दूसरा एक नाम है अनंत, आपको मालूम नहीं होगा, तो ये उसके साथ साथ अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व के साथ साथ ये काम करता है, डबल एजेंट है तो चारित्र मोहनी वाला, परंतु ये दर्शन मोहनी के साथ कार्यरत रहता है, वो मिथ्यात्व के साथ ये भी चला जाता है। हमने देखा था ना, जब सबसे पहले सम्यक हो जाता है जीव को, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन पांचों का उपशम करके सम्यक दर्शन होता है, फिर मिथ्यात्व में आता है तो उसके साथ अनंतानुबंधी का भी उदय चालू हो जाता है। तो इस तरह से वो मिथ्यात्व के साथ काम करता रहता है, उसको पूरक है, इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी का उदय है तो क्या वो तत्वार श्रद्धान रूप जो सम्यक्त है उसका घात करता है या उसको होने नहीं देता, ऐसा दोनों अर्थ ले लेना। ऐसा भी देखा था ना, निरूपण सम्यक्त काल में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो सम्यक्त का घात होता है, वो दूसरे को नुकसान में गिर जाता है, ये अनंतानुबंधी का काम। अप्रत्याख्यान क्रोधाधिक क्या है कि देश चारित्र का घात करते हैं, वे अल्प त्याग भी यानी अनुरोध भी नहीं होने देते। वो प्रत्येकान का उदय है, चौथे गुणस्थान वाला जीव है, अविरति है, उसके व्रत नहीं है, क्योंकि उसके कषाय कैसे वहाँ, ये अप्रत्याख्यान वाले कषाय है, यानी वो प्रत्याख्यान कर्म है इसलिए वो करता नहीं, ऐसी बात नहीं, वो निमित्त पर नहीं जाना, वो स्वयं अप्रत्याख्यान जाति के कषाय करता है इसलिए उसको व्रत नहीं हो रहे, जीव नहीं लगाना, निमित्त की अपेक्षा कथन आता है परंतु जीव स्वयं कषाय करता है, ऐसा नहीं कि वो सामने कषाय वो उदय है क्या करे बेचारा चौथा अनुष्ठान वाला पांचवे में नहीं जा सकता क्योंकि वो प्रत्याख्यान आवरण का उदय है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी पराधीनता नहीं है। जीव स्वयं अपनी योग्यता से वहाँ अप्रत्याख्यान जाति के कषाय करता है इसलिए उसको वहाँ व्रतादि नहीं हो रहा। प्रत्याख्यान क्रोधादि कैसे है तो ये महाव्रत रूप सकल चारित्र का घात करते, घात करते हैं होने नहीं देते। या अगर किसी को महाव्रत है और उसके प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग हो जाए तो फिर वो छठे सातवें में ये छठे में से गिरकर नीचे आ जाएगा पांचवे। संज्वलन क्रोधाधिक यथाख्यात चारित्र रूप पूर्ण वितरासता नहीं होने देते, यानी जैसे प्रसिद्ध है ख्यात यानी ख्याति अंकित है प्रसिद्धि, यथाख्यात यानी जैसा जीव का स्वरूप है, जैसे पूर्ण चारित्र सिद्धों का जैसा है वैसा होने नहीं देता, इसलिए उसको ये संज्वलन कषाय कहा। संज्वलन यानी मंद मंद ज्वलन, संयम तो चलता रहता है परंतु संपूर्ण रीति से नहीं होता। इन सभी कषायों के मंद तीव्रता की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, फिर भी स्थूल रूप से हमने इसके ऐसे चार भेद किए, चार जाति किए। ये भी कौन सी मार्गना देखी बेटा हमने, ये मार्गना का नाम क्या था? कषाय। कौन सी? कषाय मार्गना। देखो उसमें पढ़ो, अब कौन सी पढ़ेंगे? सातवीं नंबर की, क्या नाम है उसका? सात नंबर की मार्गना कौन सी है? उसमें पढ़कर बताओ, नीचे लिखा है ना बोल्ड लेटर में, क्या लिखा है? ये नीचे नीचे वहाँ पर, हाँ वो क्या है? ज्ञान मार्गना। तो अभी हम ज्ञान मार्गना देखेंगे। तो ज्ञान की अपेक्षा जीवों का विभाजन करेंगे। पहले कैसे वेद की अपेक्षा किया था, फिर कषाय की अपेक्षा किया था, वहाँ वेद वाले और बिना वेद वाले देखे थे, कषाय में कषाय वाले और बिना कषाय वाले देखेंगे देखे थे, अभी ज्ञान में ज्ञान वाले और बिना ज्ञान वाले देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ दीपाली, हाँ सारे ही जीव ज्ञान वाले ही होते, बिना ज्ञान वाले कोई नहीं है। तो ज्ञान की जो अलग अलग पर्याय होगी उसकी अपेक्षा इसमें भेद हो सकते हैं। बिना ज्ञान वाला कोई जीव होगा ही नहीं। कोई होगा क्या? आपने देखा है कोई बिना ज्ञान वाला जीव? नहीं देखा ना। अब ज्ञान मार्गना का स्वरूप देखते हैं। क्या तुम कह सकती हो कि कुछ जीव ज्ञान सहित होंगे और कुछ ज्ञान रहित? बिल्कुल नहीं, सभी जीव ज्ञान सहित ही होते हैं। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। कोई भी पदार्थ कभी भी स्वभाव विरहित हो नहीं सकता। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कोई भी पदार्थ कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जीव कितने भी विभाव क्यों न हो, कितने भी वो अन्य अन्य हीन पर्यायों में भी क्यों न पाया जाए, फिर भी उसका स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, स्वभाव कभी छूटता नहीं। वो कुछ न कुछ अंश पर्याय में प्रकट होगा ही, उसी को स्वभाव कहते हैं। ज्ञान की प्रकट पर्याय कौन सी है उसकी अपेक्षा से ज्ञान मार्गना का विभाजन होगा। तो कौन से ज्ञान मालूम है आपको? और केवल ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में कुमति, कुश्रुता और कुअवधि। देखो मति, श्रुता, अवधि, मन पर्याय और केवल पांच तो सम्यक ज्ञान है, और कुमति, कुश्रुता और विभंग, कुअवधि का ही दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। ये तीन मिथ्या ज्ञान है। अब ये जो है उनको अलग अलग नाम से भी पहचाना जाता है। तो क्षायोक्षमिक और क्षायिक, हमने सुना है कि केवल ज्ञान वो क्षायिक है, वहाँ ज्ञानावरण सारे ही ज्ञानावरण कर्मों का क्षय पाया जाता है, इसलिए उसको क्षायिक कहते हैं। और जो अन्य जो चार ज्ञान है उसको क्षायोक्षमिक ज्ञान कहते हैं। तो मति, श्रुता, अवधि, मन पर्याय क्षायोक्षमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। अब ये कौन सा ज्ञान कहाँ तक पाया जाता है, पहले गुण स्थान में कौन सा होगा, दूसरे में कौन सा होगा, चौथे में कौन सा होगा, ये सारी बातें अब हम देखते हैं। पहले और दूसरे गुण स्थान में कुमति और कुश्रुत दो मिथ्या ज्ञान होते हैं। कुअवधि यानी विभंग ज्ञान भी इन जीवों के हो सकता है, हो सकता है दिखा। अभी जो मिथ्या दृष्टि देव है, मिथ्या दृष्टि नारकी है, उनको कौन सा ज्ञान होगा? कुमति, कुश्रुता और कुअवधि, क्योंकि उनको तो वो गति संबंधी अवधि ज्ञान तो होता ही है, भले वो मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि, तो उनको अवधि ज्ञान होता ही है। जो मिथ्या दृष्टि उनका कुअवधि होगा, सम्य दृष्टि होगा उनके कुअवधि ज्ञान होगा। अन्य भी किसी पीरियंस और मनुष्यों को भी ये ज्ञान अवधि ज्ञान पाया जाता है। इन दो गुण स्थानों के देव और नारकी जीवों को भव प्रत्यय को अवधि ज्ञान होता है। मनुष्य और तिरियंशो में गुण प्रत्यय को अवधि ज्ञान होता है, यानी पूर्व भव में कोई उन्होंने तपस्या की हो या कोई विशिष्ट उनके साधना के द्वारा एक को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विशिष्ट संबंध कथा के कारण एक इंद्रियों से असन्नी पंचेन्द्रियों तक, देखो जिसको मन है ना उसी को अवधि ज्ञान हो सकता है। बिना मन वाले जो असंगी जीव है उनको अवधि ज्ञान कभी नहीं होगा। एक नियम से असंग पंचम नियम तक, नियम से कौन सा है? तो वो सुमति सुश्रुत नहीं होगा उनको, पहले गुण स्थान ये मैंने क्या कहा, एक इंद्रियों से असंगी पंचेन्द्रियों तक सुमति और सुश्रुत ज्ञान होगा कि नहीं होगा। दीपाली क्या पूछा, पहले एक इंद्रियों से लेकर असंगी पंचेन्द्रियों तक के जीवों के सुमति सुश्रुत तो पाए जाते हैं, तो उनमें सुमति और सुश्रुत होगा कि नहीं होगा। हाँ सिद्धार्थ, आप क्या कहते हैं क्यों नहीं होगा? हाँ आप बोलो। हाँ बोलो। हाँ देखो, सम्यक दर्शन किसको होता है? संगी पंचेन्द्रियों को ही होता है, वो उसकी कंडीशन है। तो कोई भी जीव एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक का जीव जो है वो तो संगत को प्राप्त ही नहीं कर सकता, और उसके मन नहीं है ना, तो वे वो पूछे ना, हमने संगत दर्शन किसको हो सकता है उसके कंडीशंस देखे थे रत्नकरण शावकाचार्य में, कुछ याद है उसमें से? जो इतने आ गए उसने बताओ, संगी पंचेन्द्रिय होना चाहिए पर्याप्त, तो जागृत अवस्था साकार उपयोग ज्ञानोपयोग, हाँ, और भव्य होना चाहिए, हाँ बराबर है। कौन से गति के जीव को होगा? चारों ही गति के जीव, और वो सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन होगा कि मिथ्या दृष्टि को होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा। अनादि वाले को होगा कि सादी वाले को होगा? दोनों को ही होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को भी होगा और सादी को भी होगा, है ना? ऐसे अलग अलग ये जो हमने उसमें से देखा, तो इसमें हमने देखा था कि संगी पंचेन्द्रिय कोई होता, कोई ऐसे कहते कोई बात नहीं, यहाँ से कोई सम्यक दृष्टि जीव मर कर वहाँ पैदा हुआ होगा तो उसके सम्यक तो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों, आप क्या कहते हैं? बाई चांस कोई सम्यक दृष्टि मर कर इनमें पैदा हो, हाँ देखो सम्यक दर्शन के बाद ये इन सारे पर्यायों में जीव पैदा ही नहीं होगा। ये सम्यक करके हमने देखी थी ना, क्या कहा, एक इंद्रियों से असंगी पंचेन्द्रिय तक के सारे ही जीव कौन से गुणस्थान में हो रहते हैं? पहले गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं, यानी तीसरे गुणस्थान में कौन सा है? मिश्र ज्ञान है, क्योंकि सम्यक से भ्रष्ट हो गया वो ज्ञान, ना सम्यक है न मिथ्या है, वो अलग ही जाति का जात्यंत्र का उसका ऐसा उसका ज्ञान होता है। चौथे से बारह गुण स्थान तक मति और शुद्ध ज्ञान तथा किसी जीव के अवधि ज्ञान होता है। छठवे से बारहवें गुण स्थान वाले किसी मुनि के मनपर्य ज्ञान भी होता है। इस तरह किसी मुनि के ऊपर बताए हुए चार ज्ञान, किसी के तीन ज्ञान और किसी के दो ज्ञान होते हैं। तो चार ज्ञान वाले को जल्दी केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा, किसको जल्दी होगा? तीन ज्ञान वाले को होगा कि दो ज्ञान वाले को जल्दी होगा कि चार ज्ञान वाले को जल्दी होगा? केवल ज्ञान किसको जल्दी होगा? देखो चार ज्ञान है इसलिए जल्दी होगा और दो है इसलिए बाद में, सब कुछ नहीं है, ख्याल में है ना? कि वो तो अलग अलग जीवों को अलग अलग वैसे प्राप्ति होती है ज्ञानों की, परंतु वो किसी को अवधि ज्ञान नहीं है, खाली मति शुद्ध ज्ञान है, इसलिए अभी केवल ज्ञान रुका है, ऐसी कोई बात नहीं, ख्याल में आया? अब ये चार ज्ञान होना अच्छा कि एक केवल ज्ञान होना अच्छा? क्यों? उनके पास तो एक ही है, किसी के पास तो चार चार ज्ञान है, क्यों? मोक्ष हो जाता है। देखो एक केवल ज्ञान है तो ये सारे ज्ञान तो उसके सामने कुछ नहीं है। देखो आपके पास 1000 रुपए की एक नोट है हा? और ये साहिल के पास 1 रुपीज की 4 कॉइन है, तो किसके पास ज्यादा पैसे है? आपके पास है ना, किसके पास एक ही नोट है 1000 रुपए की और आपके पास 1-1 रुपए की 4 कॉइन है, तो कौन बड़ा? साहिल के पास ज्यादा पैसे है क्या वैशाली के पास है? क्यों बेटा? आपके पास 4 रुपीज है और उसके पास 1000 रुपीज है, किसके पास ज्यादा है? वैशाली के। वैसे केवल ज्ञान के सामने ये बाकी ज्ञान कुछ नहीं है, समझ में है ना? भले वो कॉइन्स 4 दिख रहे हैं और इसके पास नोट 1 ही दिख रही है 1000 की, और वैल्यू किसकी ज्यादा है? वो 1000 रुपए की वैल्यू है ना ज्यादा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, किस तरह किसी मुनि के ऊपर बताए हुए 4 ज्ञान, किसी के 3 ज्ञान और किसी के 2 ज्ञान होते हैं। 13वें-14वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। 13वें-14वें गुणस्थान वाले जीवों को क्या कहते हैं हम? केवली अरिहंत भगवान है ना, और सिद्धों को कौन सा गुणस्थान है? वो गुणस्थानातीत हो गए। यह केवल ज्ञान पूर्ण विकसित क्षायिक ज्ञान है। पहले ज्ञान को हमने कौन सा ज्ञान कहा था? 153 पेज है, 153 ज्ञान मार्गना के अंत में आ गया। ये केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? अभी क्या पढ़ा वैशाली, केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? अभी पढ़ो उसमें से। यह पूर्ण विकसित क्या है? क्षायिक ज्ञान। केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं। और पहले जो हमने देखे थे मति श्रुत औदि मन पर्य वगैरह, उसको कौन सा ज्ञान कहा था? हाँ सिद्धार्थ, क्षायोपशमी। देखो ये शब्द थोड़े अटपटे है, हमें मालूम नहीं है, परंतु एक बात याद रखो तो उसका अर्थ ख्याल में आ जाता है। जब शास्त्र पढ़ते समय ये ऐसी बातें आती है तो फिर हमें ऐसे मंजूर नहीं होती, अरे इसका क्या अर्थ होगा, अरे हम तो पढ़ तो लेते हैं, चलो इसका अर्थ मालूम नहीं, ऐसे आगे चले जाए। अभी ख्याल में है, क्षायोपशमी ज्ञान जब कहेंगे तो मति शुद्ध अवधि मन पर्य, ये सारे ही क्षायोपशमी ज्ञान है, और केवल ज्ञान ये क्षायिक ज्ञान है। यानी वहाँ ज्ञान का कोई भी आवरण वाला कर्म भी नहीं है और जीव का अपना ज्ञान पूर्ण विकसित है। उस ज्ञान में से कोई चीज अनजानी रहती नहीं है। सारे ही द्रव्यों, सारे ही काल का, भूत भविष्य वर्तमान सारे कालों का, एक एक पर्याय का और सारों के अविभाग प्रतिच्छेदों का भी उनको एट अ टाइम, एक समय में। हम किसी चीज को जानते हैं या दूसरे और जाना है तो फिर बीच में कितना क्रम हो जाता है ना, एक के बाद दूसरे को जानते, परंतु उनका सारा क्रमिक नहीं है, एट अ टाइम युगपत जिसको कहते हैं, और स्पष्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके लिए उनको पदार्थों की ओर झांकना नहीं पड़ता। वहाँ कोई भी इंद्रियों का निमित्त नहीं। हमने देखा था प्राण में, देखा था केवली को कितने इंद्रिय प्राण हमने देखे थे। हाँ सीधा, केवली भगवान को इंद्रिय प्राण कितने होते हैं? हाँ सीधा जी, इंद्रिय प्राण होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों द्वारा जानने रूप कार्य वहाँ होता ही नहीं, उनका तो क्षयिक ज्ञान है, इसलिए वो इंद्रियो प्राण में हमने वो केवली भगवान को इंद्रिय प्राण नहीं गिना है। ऐसे एक एक बात ख्याल में लेना, समझ में लेना। खाली हम रटते पहले गुणस्थान में इतने हो गए, दूसरे में इतने, तेरहवें में कितने प्राण हो गए, तो ये रटने से कुछ नहीं याद रहते। तो ऐसा क्यों ऐसा उसको ख्याल में लेते है, तो सारी चीजें अपने आप ख्याल में रह जाती। तो एक साई ज्ञान है, उसका एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं पाए जाते। परंतु क्षयक्षमिक ज्ञान में देखो, केवल ज्ञान में कितने प्रकार है, केवल ज्ञान कितने प्रकार का है, एक ही प्रकार का, क्यों साई ज्ञान है और हा? पूर्ण सारों को ही जानता है। ये जो मतिशुद्ध अवधि ज्ञान में जो भेद पड़े है वो क्यों पड़े, कितना जान रहा है उसके, नहीं कितना जानता है उसकी वजह। आवरण की छोड़ो बात, हम खाली जीव की बात करेंगे। वो हम जो कहते ना ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये कम इंटेलिजेंट है, क्यों? वो बहुत जानता है और ये कम जानता है, यानी कितना जानता है उसके अपेक्षा से यहाँ हमने नाम दिए। कितना जानता है, कैसा जानता है, किस किस को जानता है, ये रूपी को जानता है कि किसको जानता है, ये सारे अवधिक भी किसको जानता है, वो रूपी पदार्थों को जानने वाला, और इस अपेक्षा से इसमें भेद किया। अब जो सारे को ही जानता है उसने भेद काहे का है ना, इसलिए केवल ज्ञान तो एक प्रकार का ही है। देखो क्षयक्षमिक ज्ञान में विषयों की अपेक्षा यानी कितना जान रहे है उसकी अपेक्षा तथा ज्ञान के क्षयक्षम की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद पड़ते रहे, यानी ज्ञान का विकास कितना है, कम है या ज्यादा है। जैसे अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान का विषय तो हमने चलो पुद्गल है जान लिया, परंतु उसमें भी किसी का अवधि ज्ञान ज्यादा पावरफुल है, किसी का कम पावरफुल है, कोई अधिक जानता है, कोई कम जानता है, कोई अधिक क्षेत्र का जानता है, कोई कम क्षेत्र का जानता है, कोई पहले बाद में ऐसे बहुत सालों का जानता है, कोई 5 साल पहले का और 5 साल पश्चात का जानेगा, और कोई हजार हजार साल का जानेगा, और कोई असंख्य वर्षों का जानेगा। तो वैसे उसकी ज्ञान की भी विकास अलग अलग है ना, हाँ ज्ञान का विकास अलग अलग है, तो उसके नाम भी अलग अलग वहाँ के, कोई देशावधि है, कोई परमावधि है, कोई सर्वावधि है। तो ये ज्ञान का विकास कितना है और वो कितने विषयों को जानता है, इसकी अपेक्षा ये सारे नाम पड़े, उसमें भी भेद सारे पड़ते। केवल ज्ञान कैसा है, वो संपूर्ण जानता है, तो उसमें कोई भेद का सवाल ही नहीं होता। अब संयम मार्गणा, देखो 7 मार्गणाएं देखी हमने, कौन याद कराएगा वैशाली बताओ, कौन कौन सी मार्गणाएं देखी हमने, मार्गणा के 14 नाम है ना, उसमें से पहले 7 बताओ। और क्या कितने मार्गणाएं अभी हमने देखी और कितने बाकी रह गए, दीपाली बताओगी? नहीं, कौन बताएगा? सिद्धार्थ ने तो बताया, आप बताओगी? आपको याद है? और 7 बाकी है, बोलो। ज्ञान मार्गणा के बाद संयम मार्गणा से शुरू, संयम मार्गणा, देशा मार्गना रेगी भी, ये ऐसी 14 मार्गना है। बहुत अच्छा, बच्चे अच्छे याद कर गए। देखो अभी 8वीं संयम मार्गना देखे, यानी संयम की अपेक्षा से सारे ही जीवों का हम वर्गीकरण करें। पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संयम की अपेक्षा से कैसे कैसे हो गए, बिना संयम वाले भी हो गए और संयम वाले भी हो गए। तो बिना संयम वाले जीव कौन से हो गए, कोई कह सकता है? हाँ दीपाली, जिसको हम असंयमी कहते हैं। वेरी गुड, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले सारे ही असंयमी है, 5वें गुणस्थान वाले को हम क्या कहते हैं, संयमासंयम, और छठे सातवें वाले को क्या कहते हैं, संयमी, यानी छठे के ऊपर के सारे संयम। अब जो संयमी है उनमें भी वो संयम के अलग अलग प्रकार गिनाए, तो वो अभी हम देखेंगे। पहले तो मूलभूत 3 भेद ख्याल में आए, असंयमी, संयमासंयमी और संयम। अब ये जो संयमी है उनमें अलग अलग प्रकार का संयम पाया जाता है, उसकी चर्चा अभी इसमें करेंगे। तो संयम मार्गणा की अपेक्षा ये सारे ही जीव संयम मार्गणा में आएंगे, असंयमी ये भी संयम मार्गणा का एक भेद है। ऐसा नहीं कि संयमी जीव ही संयम मार्गणा में पाए जाते, क्योंकि मार्गणा का स्वरूप क्या हमने देखा, सारे ही संसारी जीवों को हमको डिवाइड करें। पहले जैसे हमने व्यवसाय की अपेक्षा देखा था, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस वाले, कोई बिना व्यवसाय के। वैसे यहाँ संयम मार्गना की अपेक्षा हम वर्णन करेंगे तो कोई संयम वाले है, कोई संयमा संयम वाले है, कोई असंयमी है, वो भी एक ग्रुप हो गया उनका। तारों को गिनाना है, किसी को छोड़ना नहीं। देखो इसमें जीवों के सात भेद है। हमने मूल कितने देखे थे? तीन, असंयमी, संयमा संयमी और संयमी। और ये जो संयमी है उसके और पांच भेद बताए, तो टोटल सात हो जाएगी। उसमें संयम बिना असंयमी जीव, आंशिक संयम और आंशिक असंयम वाले, संयमा संयमी जीव और संयमी जीव, इस तरह तीन मुख्य भेद है। संयमी जीवों में भी पांच प्रकार के संयमी जीव है। अब ये पहले गुणस्थान से हमने गिनाया, पहले से चौथे गुणस्थान वाले जीव असंयमी है, पांचवे गुणस्थान वाले जीव देश संयमी यानी संयमा संयमी है, और छठवे से चौथवे गुणस्थान वाले जीव संयमी है। सम्यक, अभी संयम का अर्थ करते हैं। सम्यक प्रकार से यम अर्थात नियम, वह संयम है। छठवे से नौवे तक नौवे गुणस्थानों में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है। देखो ये शब्द जरा नए हैं। ये पांच प्रकार के संयम यहाँ बताए, वो पांच प्रकार के आप रिपीट करना मेरे पास। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाक्षात। उसके आगे संयम लगाते हैं। तो अभी देखो छठवे से नौवे तक सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो प्रकार का संयम होता है। परिहार विशुद्धि संयम छठवे और सातवें गुणस्थान में पाया जाता है। दसवें गुणस्थान में संयम कौन सा है? सूक्ष्म सांप्रय संयम। और ग्यारहवें से चौदहवें गुणस्थान तक यथाख्यात संयम होता है। हमने देखा था ना, उनमें यथाख्यात चारित्र होता है, तो यथाख्यात संयम पाया जाता है वहाँ। इस तरह से अभी इसके ज्यादातर डिटेल यहाँ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको मुख्य मार्गणा कौन कौन सी है इसका स्वरूप देखना। अब ये परिहार विशुद्धि ने क्या संयम, ये अभी तो हमारा ये विषय मार्गणा कौन कौन सी उसको सीखना है। तो पांच प्रकार के संयम का याद करेंगे पहले। चित्रा जी आप बोलिए। ये संयम मार्गणा का तो ये संयम की पूछी नहीं मैंने। संयम पांच प्रकार का है, सामायिक वगैरह। हाँ हाँ हाँ, परिहार विशुद्धि, हाँ, और यथाख्यात संयम यानी सूक्ष्म सांप्राय संयम और यथाख्यात संयम। आप बोलिए मंजू। और यथाख्यात संयम पाटनी जी, आप पूरे संयम मार्गणा के सात भेद बता रहे। हाँ हाँ हाँ, और यथाख्यात। इंदु जी आप बोलिए पूरे सात। हाँ हाँ, अब कौन बोलेगा? सूक्ष्म सांप्राय और हाँ, अब कौन कहेगा? सिद्धार्थ आप बताओगे? वेरी गुड, आप बोलिए। हाँ सामायिक, दसवे वाला, हाँ यथाख्यात संयम। दीपाली आप बोलो। ऐसा कह सकते हैं। अब संयम मार गणा के, हाँ संयम के नहीं बोलना, संयम के तो पांच भेद है और ये संयम मार्गणा के सात भेद है। कौन कहना चाहता है अभी? हाँ आप बोलिए। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ ऐसा क्या अभी याद हो गया ना सबको? तो इस तरह से ये संयम मार्गणा के सात भेद हो गए। देखो कोई चीज हमारे ध्यान में आती तो अच्छा लगता है ना, पहले तो खाली मार्गणा मार्गणा नाम सुनते थे, हम क्या मार्गणा है ऐसा हो जाता है, फिर हम उसको टाल कर आगे पढ़ने की कोशिश करते। समय चार में आता है ना, जीव कैसा है, मैं गुणस्थान रूप नहीं हूँ, मैं मार्गणा स्थान रूप नहीं हूँ, ये तो रट लिया, तो मार्गणा क्या है इसे पता, तो मैं अमुक नहीं हूँ ऐसे कहीं कह सकते हो? वो क्या चीज है वो तो पता चलनी चाहिए कि जिससे मैं भिन्न हूँ उसको पहले पहचानो तो सही। अभी ये कहते हैं कि जो सारे जो पर्याय के भेद होगी ना, ये तो कितना संयम है कितना ज्ञान है, वो मैं इससे भिन्न हूँ, तो सामान्य त्रिकाली शुद्ध हूँ, सारा अभी हमारा विषय चल रहा है ना पंचाध्याय में, ये सारे शास्त्र में तो यही बात आएगी। तो यहाँ भी ये सारा मार्गणा का या कर्मों का वर्णन आता है कर्णानियोग में, तो ये जानकर इससे मैं कोई भिन्न वस्तु, पहले तो हमें बिल्कुल जीव की पहचान नहीं थी, अब इन मार्गणाओं के द्वारा हमें जीवों की पहचान होने लगी कि यहाँ जीव है इस प्रकार का। फिर अभी हमें पता चला ना अपनी पोजीशन क्या है, हम कितने इंद्रिय वाले जीव है, तो पंच इंद्रिय है, कौन से काय वाले है। हाँ बोलो सिद्धार्थ। नहीं नहीं अभी काय मार्गणा की अपेक्षा हम कौन से ग्रुप में हो गए, त्रस काय वाले हो गए, अब योग मार्गणा की अपेक्षा से कौन से हो गए, तो ये अलग अलग जो मनोवचन योग, मनोवचन और काय योग वाले उसमें आएंगे, औदारिक काय योग वाले, तो ऐसे हमारी अभी हमने पोजीशन जान ली। तो फिर अभी इतने मात्र हम है कि इससे कुछ जुदा है, तो ये शरीर से तो हम भिन्न है, तो खाली मति शुद्ध ज्ञान इतना ही हमारा स्वरूप है क्या? नहीं, तो ये तो अभी पर्याय तो इतना है, तो हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे स्वभाव से तो हम केवल ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ स्वरूप है, तो अपने स्वभाव का पता चलता है, और फिर उस स्वभाव में हम जब उसको जानते रहेंगे तो पर्याय भी हमारी वैसे स्वभाव जैसे पर्याय प्रकट हो जाए। तो ऐसा ये सरल मार्ग है अध्यात्म का, ये खाली रटने के लिए रटना नहीं है, शुरू में प्राथमिक भूमिका में और स्पेशली बच्चों में ये याद करने को कहा जाता है, क्योंकि याद कर लेते तो कोई भी बात जब से उनके दिमाग में आ जाती है और वो उसका बराबर कनेक्शन लगता है। देखो ये इतनी गहरी बातें और इतनी छोटी उम्र में ये लोग सारे जो आप सब सीख रहे हो, ये तो बड़े बड़े विद्वान भी कितने तो ऐसे ये तो नहीं जाने, करना नियोग जैसा सूक्ष्म विषय है ना, अच्छा है, द्रव्यानुयोग भी तो पढ़े ही है, करना नियोग भी पढ़ना अच्छा है, उसमें सारी बातें सरलता से समझ में आ जाती है, अपना ज्ञान का विकास होता है ना, क्या फायदा है यही फायदा है, उसके बारे में हमारा अज्ञान था वो हमारा अज्ञान दूर हो गया, इससे और बढ़िया कोई फायदा नहीं है, यही एकमात्र फायदा। हमें क्या आदत हो गई सारा फायदा पैसों में गिनने का है ना, आप बिजनेस कितने टाइम करते हैं 12 घंटे, क्या क्या फायदा होता है, तो सारा हम पैसों में गिनते, अरे वो 12 घंटे में मैं 3 घंटे स्वाध्याय में चला जाऊंगी तो मेरा इतना नुकसान होगा, किसने गिना फायदा नुकसान, पैसों में, यहाँ क्या लाभ होता है अपने वो कोई गिनता ही नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं ना उसको। देखो अब अगला प्रकरण हमारा शुरू हो जाएगा, ये दर्शन मार्गणा अब हम देखेंगे, नौवा है ना दर्शन मार्गणा। देखो 14 मार्गणाओं में से 8 मार्गणाओं का स्वरूप हमने देखा, नौवीं दर्शन मार्गणा है। चेतना के ज्ञान और दर्शन दो भेद होते हैं, पहले हमने देखा था ना, उस दिन याद किया था कि मैं तो एक जीव द्रव्य चेतना गुण का धारी अरूपी असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार वाला ऐसा, और ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूपी अचेतन, ऐसे ऐसे हमने देखा था उसमें, तो ये जो चेतना गुण का आधारी मैं हूँ, तो चेतना का अर्थ क्या है, ज्ञान दर्शन, यानी मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो उनमें से जो दर्शन है उसकी अपेक्षा, देखो दर्शन शब्द शास्त्र में दो गुणों की अपेक्षा से आते हैं। जैसे मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, वहाँ कौन से गुण को हम सम्यक मिथ्या लगाते हैं? हाँ बेटा, श्रद्धा, यानी सम्यक श्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा। और यहाँ जो ज्ञान दर्शन वाला जो दर्शन है, तो वहाँ ये दर्शन गुण जो है वो चेतना वाला दर्शन। तो उसका अर्थ आप देखेंगे कि जो दर्शन है उसकी अपेक्षा, यानी दर्शन गुण की पर्याय की अपेक्षा दर्शन मार्गना का विभाजन होगा। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है। बाह्य पदार्थों के जाति, क्रिया, गुण, प्रकार आदि विशेष न करते हुए, यानी किसी अभी इसको जान रहे हैं, इसको कोई विशेष नहीं करेंगे किसी के साथ, बस खाली वस्तु है इतना हमने ग्रहण किया, वो कौन सी है, कौन से रंग की है, वो कैसी छोटी है बड़ी है, उसका क्या उपयोग होता है, कुछ है उसके बारे में हम ज्ञान नहीं करेंगे। उस ज्ञान के पहले खाली इसका हमें परसेप्शन हो गया, इस चीज का सामान्य प्रतिभास जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं दर्शन। यानी ज्ञान के पूर्व में जो होता है, ज्ञान के पूर्व जीव ने उसको कुछ ग्रहण किया ना, अभी जब जाना कहते हैं तो वो ज्ञान गुण हो जाता है। ज्ञान के पहले उसने जो कुछ उसके बारे में पदार्थ के बारे में उसको अभी ज्ञान ही कहेंगे, ज्ञान कहने से उसकी विशेषता ख्याल में आती है, और बिना विशेषता से जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। देखो अवलोकन कहते हैं उसको। देखो यहाँ क्या लिखा है, बाह्य पदार्थों के जाति, क्रिया, गुण, प्रकार आदि विशेष न करते हुए स्वयं का और अन्य पदार्थों का, देखो स्वयं को भी लिया उसमें, स्वयं का और अन्य पदार्थों का केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण करना, सामान्य सत्ता अवलोकन करना दर्शन कहलाता है। अपना भी ज्ञान होगा उसके पहले अपना भी ग्रहण होगा ना, तो स्वयं का भी सत्ता का ग्रहण हो जाता है। देखो सामने कोई चीज है, हम क्या कहते हैं, मैंने चौक को जाना, किसने जाना, मैंने जाना, तो मेरे ज्ञान में आ रहा है ये अपने जाना कि नहीं जाना, कि सिद्धार्थ ने जाना इसे अपने नक्की किया, ये किसको दिखता है? हाँ बेटा ताई, ये किसको दिख रहा है? सबको दिख रहा है, वो तुझे क्या पता सबको दिखता है कि नहीं। वो दीपाली तो आंखें बंद करके बसी बैठी है, उसको कहाँ दिखता है? ये आपको दिख रहा है? तो हम क्या कहते हैं, मुझे दिख रहा है, पीछे मम्मी ने देखा कि नहीं, आपको कैसा पता? हाँ है ना, तो क्या कह सकते हैं, मुझे दिखा, सिद्धार्थ को दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, अभी उसकी जाने दो। आपको कोई, हमने पिन नहीं थी चुभोई, किसको चुभा? आपको चुभा ना, तो ये मुझे हुआ ज्ञान, ये किसके ज्ञान में आया? यानी पहले मैं को जाना कि नहीं, मैं को जाने के जाने बिना हमने कैसे पहचाना कि ये मुझे दिखा? दीपारी ख्याल आता है? देखो ये जो समय सार में बात आती है ना कि आत्मा का ज्ञान तो आबाल गोबाल सबको हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है ना, ये सारी चीजें मुझे जान रही, मुझे भूख लगी, मुझे ज्ञान हुआ, मुझे ये कुछ नहीं समझता, ये मेरा 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 ऐसा जो आता है, तो पहले हम अपने को पकड़ते हैं, फिर पर पदार्थ को पकड़ते हैं। ये इसको कहते हैं सामान्य अवलोकन। ये न्याय शास्त्र के ग्रंथों में तो इसको लिया है दर्शन, और बाह्य चीजों का ग्रहण उसको ज्ञान में डाला है। अलग अलग अपेक्षाओं से बात अलग अलग आती है, परंतु हम यहाँ इसे लेंगे कि पदार्थों का सामान्य प्रतिभास है वो दर्शन है, और उसकी विशेषताओं का प्रतिभास होना उसको ज्ञान कहते हैं। ख्याल में आया? इसलिए यहाँ क्या लिखा कि स्वयं का और अन्य पदार्थों का केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण करना, यानी सामान्य सत्तावलोकन करना, यानी सामान्य सत्ता का अवलोकन करना दर्शन कहलाता है। शास्त्र में जहाँ सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन शब्द हम पढ़ते हैं, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है। वह अर्थ यहाँ नहीं लेना, यानी दर्शन मार्गना में वो अर्थ हमने नहीं लिया। दर्शन के चार भेद है, याद है किसी को? हाँ और केवल दर्शन। देखो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, उनकी अपेक्षा से दर्शन मार्गना में जीवों का विभाजन होता है। अब मुझे कहो कि दर्शन से रहित कितने जीव होंगे और दर्शन से सहित कितने होंगे? हाँ सिद्धार्थ बोलो। नहीं, यहाँ जीवों का विभाजन हम कर रहे हैं ना, सारे ही जीव पहले गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक, जैसे हमने पहले देखा था क्रोध वाले हैं, बिना क्रोध वाले हैं, सारे ही जीव ज्ञान सहित है, वैसे दर्शन रहित और दर्शन सहित कितने होंगे वैशाली? दर्शन रहित भी कोई जीव होगा कि नहीं होगा? हम कैसे हैं, कौन से गुण के धारी है? चेतना गुण के धारी है, यानी हम कैसे हैं? ज्ञान दर्शन से वो स्वभाव है हमारा, और क्या देखा था, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। कषाय हमारा स्वभाव है क्या? नहीं, इसलिए कषाय निकल जाते हैं और हम वीतरागी बन जाते हैं, बराबर? हमने देखा था ना, वीतरागी ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान में वीतरागी हो गया जीव, इसका अर्थ क्या है, कषाय उसका स्वभाव हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, यानी क्रोध मान मान अपने में भी क्रोध आता है और चला जाता है, परंतु ज्ञान कायम रहता है। तो कोई एक ज्ञान के साथ दर्शन भी हमेशा होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर चेतना कहा, हम चैतन्य है ना, चैतन्य वाले, चेतना गुण वाले। तो अब कहो कि दर्शन से रहित कितने जीव होंगे? ज्ञान से रहित कोई है क्या? तो दर्शन से रहित कोई होगा क्या? ये उपयोग की बात नहीं है, उपयोग में एट ए टाइम ज्ञान या दर्शन हो सकता है, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होगा, परंतु ज्ञान और दर्शन ये दोनों का जो व्यापार है, दोनों की पर्याय हमेशा चलती रहे। अब ये कौन सी पर्याय होगी उसकी बात है, ख्याल आता है सिद्धांत? अब कहो कितने दर्शन वाले हैं और कितने दर्शन रहित है? हाँ, कोई भी दर्शन रहित नहीं है, सारे ही जीव। केवली भगवान को दर्शन होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा? केवल दर्शन। बहुत अच्छा, देखो दर्शन की चार, उनकी अपेक्षा से दर्शन मार्ग में जीवों का विभाजन होता है। चक्षु अर्थात, अब ये चक्षु दर्शन क्या है और चक्षु दर्शन क्या है इसकी डेफिनेशन बताए। चक्षु अर्थात नेत्रों द्वारा जो सामान्य ग्रहण अथवा चक्षु इंद्रिय के विषय का प्रकाशन चक्षु दर्शन है, यानी चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होगा ना, उसके पहले चक्षु के द्वारा हम किसको पकड़ते हैं? रूपी पुद्गल को देखते, उसका वर्ण देखते हैं, तो उसके पहले उस पदार्थ का जो सामान्य ग्रहण है उसको हम कहेंगे चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होगा वो तो ज्ञान होगा, उस ज्ञान के पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन होगा। नेत्रों के अलावा अन्य चार इंद्रियों और मन विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है। अभी आंखों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके अलावा अन्य कौन कौन से ज्ञान होते हैं? अन्य कौन से इंद्रियों के द्वारा जानते हैं? हाँ बेटा, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श रस नहीं, स्पर्श रस तो पुद्गल के गुण है, स्पर्शन इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन, इनके द्वारा भी हम जानते हैं, और इनका जो विषय है, इनके जो जो विषय है, यानी पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये जो है उनका जो सामान्य अवलोकन है उसको क्या कहेंगे? अचक्षु दर्शन। चलाया तो चक्षु दर्शन कौन किस जीव को होगा? जिसको चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय किस किस को है? चार इंद्रिय वाले को है अकेला कि पंचेंद्रियों को भी है? तो चार इंद्रिय वाले, असंधि पंचेंद्रिय और संयी पंचेंद्रिय, इनको चक्षु दर्शन होगा। उनको अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा, पंचेंद्रिय जो, उनको अचक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं? स्पर्श इंद्रिय द्वारा, रसने इंद्रिय द्वारा, ग्रहण इंद्रिय द्वारा, कर्ण इंद्रिय द्वारा, मन द्वारा जो जो होता है सामान्य अवलोकन, तो पंचेंद्रियों को चक्षु दर्शन है कि नहीं है? हाँ दीपाली, है। क्यों? अन्य विषयों द्वारा भी ग्रहण चल रहा है ना उनका। वैशाली नहीं समझ में आ रहा, फिर बता दो। चक्षु इंद्रिय किसको है? हाँ, कौन से इंद्रिय वाले जीवों को है चक्षु? अने आंखें किस किस को है? चार इंद्रिय वाले को और पांच इंद्रिय वाले को, सैनिक और असैनिक को, बराबर। अभी आंखों के बिना अन्य इंद्रिय वहाँ है कि नहीं है? कौन कौन सी इंद्रिया है? स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय है और मन भी है। तो इनके द्वारा जो दर्शन होगा उनको क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन। तो अभी सैनी पंचेंद्रिय जीवों को कौन कौन से दर्शन हो गए? बोलो, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। एक इंद्रियों को कौन सा होगा बोलो? उनके पास कितने इंद्रिया है? एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय जीवों के पास कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय। तो उनको कौन सा दर्शन होगा अभी आप बताओ, ये आसान है ना। उनके पास आंखें हैं क्या? नहीं। तो कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन। देखो फिर से बताएं, जिनको आंखें हैं उनको चक्षु दर्शन, बराबर। अभी एक इंद्रियों के पास आंखें हैं क्या? उनको कौन सा दर्शन होगा? चक्षु यानी आंख, बराबर। तो उनके पास आंख नहीं है, एक ही इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय। तो उनको कौन सा दर्शन है? चक्षु दर्शन। कौन सा? अभी दो इंद्रिय जीव को कौन सा है? अचक्षु दर्शन, बहुत अच्छा। तीन इंद्रिय जीवों को कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। चार इंद्रिय जीवों को कौन सा दर्शन है? चक्षु भी है और अचक्षु भी है, क्योंकि चार इंद्रिय वाले हैं ना, तो उनमें तो एक इंद्रिय तो चक्षु हुआ और बाकी अन्य तीन भी इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय भी है, रसन इंद्रिय भी है और घ्राण इंद्रिय भी है। इनके लिए तो अचक्षु दर्शन और आंख के लिए चक्षु दर्शन, तो उनमें दोनों है। अभी आप ख्याल में आई, पंचेंद्रिय जीवों में दोनों हो गए कि नहीं हो गए? उनमें भी आंख भी है और अन्य चार इंद्रिय भी है, तो उनमें कौन कौन से दर्शन हो गए? चक्षु और अचक्षु दोनों। कौन सा हो सकता है? ज्ञान हमने कितने देखे थे? जब केवल दर्शन होगा उसको अन्य चार नहीं, अन्य तीन नहीं होंगे, तो उनको एक ही रहना। नहीं देखो, अभी ये बात आगे आने वाली, अगले पैराग्राफ में देखा। अभी पढ़ो इसमें से, एक इंद्रियों से तीन इंद्रियों तक मात्र अचक्षु दर्शन होता है। मात्र लिखा, यानी केवल कौन सा होता है? अचक्षु दर्शन, क्योंकि वहाँ चक्षु है नहीं, क्योंकि उन्हें चक्षु इंद्रिय नहीं है। ये बात ख्याल में आई वैशाली? अब देखो आगे, चतुरिंद्रियों और असंगी संगी और असंगी पंचेंद्रियों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। ये भी बात ख्याल में आई? अब अगली बात, संगी पंचेंद्रिय अवधि ज्ञानी जीवों के, अभी हमने देखा था ना कि संगी पंचेंद्रियों में ही अवधि ज्ञान हो सकता है, मन है ना उनके, तो ऐसे अवधि ज्ञान कौन कौन से जीवों को होता है हमने देखा था, देवों को होता है, नारकियों को होता है, और किसको होता है, किसी किसी मनुष्य तीर्यंचों को होता है। तो जिनको जिनको अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के पहले क्या होगा, अवधि दर्शन, हमने देखा था पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो जिनको जिनको अवधि ज्ञान है उनके उनके अवधि दर्शन भी होगा। हाँ नहीं, अवधि दर्शन में को अवधि सु अवधि दर्शन में को और सु नहीं लगता, क्योंकि वो तो सामान्य अवलोकन है वहाँ और वो निराकार होता है, तो उसमें सु और कु लगता नहीं है, उसमें अवधि दर्शन लेना। अब जो हमने टेबल पढ़े थे उसमें विभंग ज्ञान के पहले उन्होंने दर्शन बताया ही नहीं था, उसका अर्थ भी हमने अनेकों को पंडितों को भी पूछा था, उन्होंने बताया कि वहाँ अवधि दर्शन ही समझ लेना। जो समय ज्ञान चंद्रिका में जो टेबल पढ़ा था हमने, तो उसमें कु अवधि ज्ञान वाले के पहले दर्शन उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो वहाँ वो वही समझना कि अवधि दर्शन पूर्वक ही अवधि ज्ञान होता है। संगी पंचेंद्रिय अवधि ज्ञानी जीवों के अवधि दर्शन भी होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंतों के केवल दर्शन होता है। अभी जो केवल दर्शन होगा वो कौन से ज्ञान के पहले होगा? हाँ बोले, आप क्या कहते? मैंने प्रश्न क्या पूछा? जो केवल दर्शन है, हाँ हाँ हाँ, देखो जो क्षयोक्षमी ज्ञान है उसके पहले उसका दर्शन होगा, परंतु केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है, उसमें क्रम नहीं होता। ये जो क्षयोक्षमी ज्ञान वालों में दर्शन और ज्ञान में क्रम होता है, दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग फिर दर्शनोपयोग ऐसा, और ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे होते हैं, युगपत होते हैं, यानी सामान्य प्रतिभास और पदार्थों का विशेष जाना, ये सारा ही उनका एट अ टाइम होता है, उनके लिए क्रम की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ मात्र संसारी जीवों का विभाजन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ सिद्धों को छोड़कर अन्य जीवों संबंधी कथन कर रहे हैं। अब सिद्धों में बताओ क्या होगा, कौन सा दर्शन होगा और कौन सा ज्ञान होगा? नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। मित्रा जी आप क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कह रहे हैं कि दर्शन नहीं होगा, खाली ज्ञान होगा। अरे हाँ, सिद्धार्थ आप फिर क्या विचार बदल रहे हैं आपका, फिर सोच कर उत्तर देना, उत्तर गलत है या सही है एक बात नहीं है, सोचना उसके ऊपर, क्या अनुमान लगा सकते हो आप, वहाँ दर्शन गुण है कि नहीं है, तो उसका कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि चेतना गुण के धारी है, सिद्ध भगवान में तो दर्शन गुण कहीं चला नहीं जाएगा, दर्शन ये तो स्वभाव है, सामान्य अवलोकन करने रूप जो दर्शन गुण है तो उसका वो स्वभाव है, स्वभाव चला नहीं जाएगा। तो सिद्धों में होगे कि नहीं केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों युगपत, जैसे केवली को अरहंत को है वैसे सिद्धों को भी केवल दर्शन भी है और केवल ज्ञान भी है, ख्याल आता है? मेरे बराबर बुद्धि में बैठता है क्या, खाली मैं कहती हूँ इसलिए हाँ कहती हूँ, बराबर ख्याल आता है ना? ये बाद में सिद्धों में इसमें से कौन कौन से मार्गणा का क्या क्या लगता है ये सारा देखने वाले हैं। मार्गणा में सिद्धों को लिया नहीं है, परंतु सिद्धों पर ये सारे ही घटाएंगे, उनमें कौन सा ज्ञान होता है, उनमें कौन सा दर्शन होता है, उनमें कौन सी कषाय होती है, बोलो सिद्धों को कौन सी कषाय होती है? हा? कोई भी नहीं, बहुत अच्छा सह बराबर बच्चे। अब लेशा मार्गणा का प्रकरण देखेंगे, वो लेशा नाम कभी भी सुना नहीं ना हमने, तभी लेशा क्या है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। लेशा मार्गना संबंधी विचार करते समय पहले लेशा क्या होती है इसके बारे में विचार करेंगे। लेशा दो प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। लेशा यानी कलर, वर्ण। हम कहते हैं मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, शरीर के वर्ण है ना। अभी भंवरा है वो काला है, कोई कमल का फूल है वो कैसा है, सफेद है या लाल है, वो क्या हुआ उसका वर्ण। तो द्रव्य लेशा कहते हैं उसको। नार के वो एकदम काले कलर के होते हैं तो उनकी द्रव्य लेशा है वो कृष्ण है। तो उसमें द्रव्य लेशा और भाव लेशा। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं। कषायों से अनुरंजित यानी रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं। अकेले कषाय को नहीं, अकेले योग को भी नहीं, तो कषाय और योग दोनों को मिला हुआ यहाँ लिया। तो कषायों से अनुरंजित यानी कषायों से जो मिली हुई ऐसी जो योगों की प्रवृत्ति है, यानी कषायों के साथ वाली जो योगों की प्रवृत्ति है उसको कहते हैं भाव लेशा। योग हमने देखे ना, आत्म प्रदेशों का चंचल होना, उसको हमने योग देखा था। और कषाय भी देखे थे, क्रोध मान माया लोग, उसमें भी तीव्र कषाय मंद कषाय, यानी तीव्र कषाय सहित जो आत्मा का प्रदेश स्पंदन होगा वो होगी वो तीव्र वाली लेशा। उसके नाम क्या है वो अभी देखेंगे हम। अभी कोई बिल्कुल मंद कषाय है, क्रिया वही कर रहा है, शरीर की वही क्रिया कर रहा है, कोई बहुत तीव्र क्रोधी होकर कर रहा है और कोई एकदम मंद कषाई कर रहा है, बाह्य में तो दोनों की क्रिया एक सरखी दिख रही है। तो लेशा किसकी होगी, वो तीव्र क्रोधी वाले की तीव्र लेशा है, उसको कृष्ण लेशा कहते हैं। और एकदम मंद कषाई वाले की वो कमती यानी वो शुक्ल की तरफ वाली लेशा। अभी उसमें से नाम देखेंगे तो पता चलेगा। मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेशा कहते हैं। देखो आपने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा कि एक वृक्ष है, तो छह आदमी गए वहाँ तो उनको आम खाने की इच्छा हो गई। हमारे घर में मंदिर, घर मंदिर था बड़ा, बहुत कमरा, तो उसमें एक एक दीवार पर ऐसे अलग अलग एक एक चित्र बने थे, तो वो लेशा का वृक्ष का वो वहाँ भी चित्र था। तो एक आदमी तो क्या करता है कि पूरा वृक्ष, अभी इसलिए उसकी वो ट्रंक होती है वो क्या नीचे का तना के देखो, ट्रंक शाखा नहीं, ट्रंक, पूरा वृक्ष ही वो कुराड़ी से काटने लगता है। क्यों, आम खाने ना उसको। दूसरा क्या, दूसरी तो बड़ी बड़ी शाखाएं काटता है। तीसरा क्या करता है, वो आगे आगे जहाँ आम लगे हैं जैसे छोटी छोटी डालियां काटता है। चौथा क्या कर रहा है, उसमें से फल काट काट कर या और छोटी छोटी डालियां काटता है। पांचवा अकेले खाली उसमें से वो आम, पके हुए आम निकालता है। और छठा क्या कहता है, करता है तो नीचे गिरे जो है हवा से, जो नीचे गिरे है आम वो लेकर खाता है। खाने की तो सबकी इच्छा है, मगर कौन कितना क्या क्या कैसा कार्य रहता है, किसके कषाय कितने हैं, तो पूरा वृक्ष काट कर खाओ, तो उसको कहते वो कृष्ण लेशा वाला। वो दूसरा जो है वो नील लेशा वाला है, यानी उसके कषाय कम की कम है। यानी अभी नाम देखेंगे उसको, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये कलर के नाम दिए वहां, परंतु वहां कोई कषायों के कलर नहीं होते, तो उसको समझाया है कलर के माध्यम। तो अधिक जो तीव्र कषाय के साथ जो वो कार्य कर रहा है उसके कृष्ण लेशा होंगे। अभी ये सारा पढ़ेंगे, तो इसे चित्र बना, ये चित्र अन्य भी जगह बहुत से आपने देखा होगा, किसी मंदिर में वगैरह पाटनी जी ने देखा होगा, नहीं देखा। हाँ, ये लेशा का चित्र है। दूसरा भी वो, हाँ दूसरा भी एक चित्र आता, मेरे तो ये चार आठ दस चित्र ऐसे हमारे वो कमरे में थे, जो बड़े बड़े दीवारों में थे, बड़े बड़े दीवार थे। वो भी एक वृक्ष देखा होगा ना आपने, एक चित्र ऐसा भी बनता है कि एक वृक्ष पर डाली पर ऐसे लटका रहा है कोई, नीचे बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर अजगर है।
हाँ,
वो मुंह लेकर ऐसे खोले, कभी वो आदमी गिरता है कभी उसको खा ले, और वो डाली अभी टूटने को आई है। क्यों? वो चूहे का सफेद काले चूहे काट रहे हैं, वो डाली से लटक रहा है, बीच में वो मधुमक्खी का वो मक्खियाँ ऐसे भिनभिना रही, वो काटने को दौड़ रहे, परंतु एक शहद की बूंद गिर रही है, तो वो अभी एक बूंद खा लू फिर मैं आऊंगा। वहाँ एक विमान आता है, वहाँ उसमें देव बैठे, उसको कहते चलो मैं तुझे लेके जाता हूँ, ये सब देखो यहाँ मधुमक्खियाँ मंदिर, वो चूहे काट रहे, वो डाली अभी नीचे गिर जाएगी, नीचे वो सर्फ है महाभयंकर वो खा डालेंगे। तभी उसमें किसने अटका है? मधु की एक बूंद में, वो मिठास में उसके सारे मरण के सारे ही आजू बाजू उसको नहीं वो दिखते। वैसे हम तो ऐसा, वो ऐसा विप्रागी भगवान हमें कहते हैं, अभी ये संसार सारे में से छूटने का मैं मार्ग बताता हूँ, इसमें आ जाओ, स्वाध्याय सुन लो और अपना स्वरूप पहचान लो। नहीं नहीं, मुझे पैसे मिल गए, अभी ऐसे लगता है ना, और मैं धंधा करूँ और पैसे मिलेंगे, या घर में और मुझे अच्छा रस आ रहा है, अभी तो बच्चे हैं, फिर उनकी शादी करूंगा, फिर वो बहुएं आएंगी, फिर उनके मेरे पोते हो जाएंगे, फिर उनको समझ, यानी उसमें से अपने को रस आता रहता है। और ये इसमें से छूटने का मार्ग है, परंतु वहाँ ध्यान नहीं जाता, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। देखो ऐसे चित्रों के द्वारा भी ये कितने मर्म की बात बताते, मन वचन और काय रूप जो योगों की प्रवृत्ति है वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेशा कहते हैं। कर्म का बंध किस प्रकार होता है यह बात देखते समय हमने पढ़ा था कि योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। कर्मों का जो बंध होता है ना, उसमें कितने परमाणु आते हैं उसकी संख्या को कहते हैं प्रदेश, प्रदेश बंध। और प्रकृति यानी वो ज्ञानावरण किए, दर्शनावरण किए, मौनी किए, ये जो आठ विभाजन होते हैं उसको कहते हैं प्रकृति। वो किसके कारण होता है? तो योग के कारण होता है। और कषाय उनसे स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है, यानी कर्म कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे, बाद में उसको फल देके निकल जाएंगे, उसको कहते हैं स्थिति बंध। और अनुभाग बंध यानी वो कितना और कौन सा फल देंगे, रस कितना होगा उसमें, कितनी डिग्री होगी उसका, तो उसको कहते हैं अनुभाग बंध। कषायों का सद्भाव मात्र दसवें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। अभी हमने देखा था ना कषाय मार्गना में, कषाय वाले जीव दसवें गुण स्थान तक होते हैं। अब लेशा का हमने क्या डेफिनेशन देखी अभी, लेशा की कषाय से अनुरंजित योग, तो कषाय सहित वाले योग कौन से गुण स्थान तक होंगे? दसवें तक, क्योंकि दसवें तक ही कषाय है, बाद में अकेला योग रह जाएगा, तो एक्चुअली वैसे तो दसवें तक ही लेशा होनी चाहिए, बाद में तो लेशा नहीं हो सकती है। फिर भी पहले कषाय सहित था, परंतु अभी वो खाली योग रह गया, तो उपचार से वहाँ भी ग्यारहवें बारहवें वाले को भी तेरहवें वाले को भी वहाँ लेशा कहने में आती है, परंतु एक्चुअल वो वहाँ कषाय से सहित वाला योग नहीं, अकेला योग है। समझ ना, योग कौन से गुण स्थान तक है? तेरहवें तक है, तेरहवें के अंत तक है ना, तो वहाँ ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें वाले को बिना कषाय का अकेला योग है, तो उसको उपचार से शुक्ल लेशा कहने में आती है। अभी लेशाओं के नाम पहले पढ़ेंगे हम, तो ये ख्याल में आ जाएगा। कषायों का सद्भाव मात्र दसवें गुणस्थान तक ही पाया जाता है, तो फिर उसके ऊपर के गुणस्थानों में लेशा होगी या नहीं, ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। कषाय नहीं होने पर भी केवल योगों का सद्भाव ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में होता है, इसलिए वहाँ उपचार से यानी भूतपूर्व न्याय से, यानी पूर्व में थी इसलिए लेशा कही जाती है। ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में उपचार से शुक्ल लेशा बताई है। चौदहवां गुणस्थान अयोगी गुणस्थान है, तो चौदहवें गुणस्थान वाले को लेशा होगी कि नहीं होगी, उपचार से भी या बिना उपचार से भी, क्यों नहीं होगी? वहाँ योग भी नहीं, कषाय का तो सवाल ही नहीं, इसलिए वहाँ लेशा भी नहीं। वहाँ तो योग भी नहीं है, इसलिए उस गुणस्थान में लेशा भी नहीं है। अब संकलेश ये जो छह नाम है ना उसके लेशा का, तो उसकी चर्चा आप करेंगे। संकलेश यानी तीव्र कषाय अशुभ भाव, यानी विशुद्धि यानी मंद कषाय शुभ भाव। संकलेश से विशुद्धि तक कषायों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं, उनसे युक्त लेशाओं को छह नाम दिए हैं। यानी बहुत तीव्र कषाय के साथ वाले हो और मंद 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 कषाय के साथ वाले हो, तो इन लेशाओं के भी अलग अलग नामों से उसको गिना है। तो बहुत तीव्र वाले उसको कहेंगे कृष्ण, फिर नील, तीसरा है कपोत, पीत, पीत को ही तेजो लेशा भी कहते हैं, पद्म और शुक्ल। इन सबके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। इनमें से कृष्ण, नील और कपोत अशुभ लेशा है और पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेशा है। कौन कौन से नाम है? नील, पीत और शुक्ल। सिंपल या बोलो, कृष्ण, और शुक्ल। सिद्धार्थ बोलो आप, चित्रा जी आप बोलिए, शुक्ल। ये किसके नाम चल रहे हैं? लेशा के। लेशा किसको कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योग के प्रवृत्ति जो है उसको लेशा कहते हैं। तो लेशा किसको नहीं होगी पहले से चौदहवें गुणस्थान तक के जीवों में? चौदहवें वाले को नहीं होती। अब ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें वाले को कषाय है क्या नहीं है? हाँ बेटा, इधर क्या कहते हैं? कषाय नहीं है तो अकेले योग है, तो वहाँ उपचार से लेशा बताई। कौन सी लेशा बताई वहाँ उपचार से? शुक्ल लेशा। यानी इन सबसे सब में से जो विशुद्ध अतर ऐसा परिणाम है ऐसे शुक्ल लेशा। वहाँ तो कोई कषाय है ही नहीं है। अब तो समय हो चुका है, कौन से गुणस्थान में कौन सी लेशा होती है ना, ये हम कल देखेंगे। तो कल जरा इसको हम दोहरा देंगे तो लेशा का प्रकरण हमारे ख्याल में आ जाए, क्योंकि ये नया विषय है, कभी सुना नहीं ना लेशा का, बच्चों ने तो कभी सुने नहीं होगा। जैसे यहाँ तो विषय चला था अपना बहुत लंबे समय तक, वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नवो सदा देता हो।